हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये सुनकर अनामिका ने केवल गहरी सांस ली। अनामिका को परेशान देखकर झलक बोली, आखिर तुम क्यों परेशान होती हो, मुझे वहां किसी से कोई काम नहीं है। उसके बाद मैं खुराना मेंशन जाऊंगी, वो लॉकेट लेकर आऊंगी। अब ये सुनकर तो अनामिका हक्का बक्का रह गई थी, लेकिन झलक सीधा जाकर अपने कमरे में लेट गई थी और कुछ थॉट्स ना आए इसलिए वो फ़ोन लेकर स्क्रॉल करने लगी थी। लेकिन फ़ोन पर ट्रेंडिंग रिलेटेड पोस्ट चल रही थी। आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। अब ये देखकर झलक की आंखें लाल हो गई थी, क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी भर झलक की ज़िंदगी बर्बाद करके अब अपनी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाही थी। लेकिन भले ही तुम लोग मुझे अपनी शादी में ना बुलाओ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसी दिन ज़रूर जाना चाहिए। कुछ सोचते हुए झलक ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करने लगी थी। फिलहाल दूसरी ओर शालिनी गुप्ता का गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि झलक ने उस पर हाथ उठाया था, वो भी आदित्य राणा के सामने, जिसके सामने वो एक परफेक्ट पर्सनैलिटी शो करना चाहती थी। लेकिन बात इतनी बड़ी हो जाएगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इस वक्त उसका गुस्सा किसी कंट्रोल में नहीं था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसने सोच लिया था कि चाहे उसे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़ जाए, वो इस लड़की को ढूंढ कर रहेगी जिसने उस पर इस तरह से हाथ उठाया था, और बड़ी महफिल में उससे माफ़ी भी मंगवाएगी। उसने अपने कुछ आदमी उसे ढूंढने के लिए भेज भी दिए थे। लेकिन इस वक्त उसका फ़ोन बजने लगा था। फ़ोन पर दादाजी का मैसेज था कि कल वो ठीक टाइम पर ऑफिस में मिले, क्योंकि दादाजी कल ऑफिस आ रहे थे। अब शालिनी बड़बड़ाते हुए बोली थी, ये बूढ़ा ऑफिस क्या करने के लिए आ रहा है? अरे मैंने तो कह दिया है आराम से अपनी बुढ़ापे की ज़िंदगी गुजारो, तो उसे क्या ज़रूरत है इस तरह से ऑफिस में आने की? मैं संभाल लूँगी सब, वैसे भी इसके जाने के बाद तो पूरा इंडस्ट्रीज़ मेरी ही हो जानी है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वो थोड़ा सा खुद को बेहतर फील करने लगी थी। फिलहाल वहीं दूसरी ओर आदित्य कबीर के साथ एक बार में बैठे हुए थे और दोनों साथ बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। तभी कबीर ने आदित्य को देखते हुए कहा, यार तुम जानते हो आज मुझे वो लड़की मिली थी जहाँ तू अपनी मीटिंग के लिए जाने वाला था। मैं वहाँ एक्चुअली थोड़ी देर के लिए गया था, मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे, और मैं समझ गया था कि तेरी भी वहाँ मीटिंग है तेरे पास, लेकिन मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन मुझे वो लड़की मिली थी जो ज़बरदस्ती मुझे तुम्हारे क्लब के अंदर लेकर गई थी। ये सुनकर आदित्य राणा थोड़ी देर डूबने के बाद बोला था, यार वो लड़की मुझे भी मिली थी, पर पता नहीं क्यों, तुम जानते हो वो लड़की जब मुझे मिली उसने किसी पर हाथ उठा दिया था। उसने शालिनी गुप्ता पर हाथ उठाया था, जानते हो, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ की मैनेजर पर। ये सुनकर कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोला, क्या सच में यार, वो लड़की तो कोई तूफ़ान है, आंधे की तरह आती है और तूफ़ान की तरह चली जाती है, क्या है उस लड़की का सीन समझ में ही नहीं आ रहा। तभी आदित्य बोला था, कुछ भी हो लेकिन वो लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैंने ऐसी लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। कितना ज़्यादा गुस्सा है ना, जब देखो जिस पर देखो हाथ उठा देती है, उसे बिल्कुल भी किसी से डर नहीं लगता, काफ़ी ब्रेव है वो लड़की। तभी कबीर बोला था, वैसे यार तुझे उसकी ब्रेवरी ही ज़्यादा दिख रही है, लेकिन तुझे दिखाई नहीं देता कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। ब्यूटी विद ब्रेन है यार, ब्रेव ब्रेन एंड ब्यूटी, देखा नहीं कितनी प्यारी है, ब्रेन भी है, दिमाग भी है, बहादुर भी है, और साथ ही साथ खूबसूरत भी है। सचमुच यार ऐसी लड़की तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी ही नहीं। तभी अचानक झलक की तारीफ होने पर अपने आप ही आदित्य के गाल पूरी तरह से लाल होने लगे थे, लेकिन फिलहाल वो खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करके बोला था, देख तू यहाँ फालतू की बकवास करने के लिए आकर बैठा है, तूने देखा नहीं उस लड़की का गुस्से का तेवर, उसका गुस्सा दिमाग पर बैठा रहता है, छोटी छोटी बात पर जब देखो जहाँ देखो हाथ उठा देती है, क्यों उस लड़की को डर नहीं लगता है? अब जैसे ही आदित्य ने इस तरह से झलक के बारे में बातें की, कबीर कुछ पल के लिए हैरानी से बोलना ही भूल गया और उसे घूरते हुए उल्लू की तरह देखने लगा। अब आदित्य आगे कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन कबीर को अपने ऊपर इस तरह से देखते हुए देखकर वो हैरानी से भर गया और बोला, अब तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, पागल हो गया है क्या? लेकिन तभी कबीर ने एक बार फिर अपने कानों को मसलने की एक्टिंग करते हुए उसकी ओर देखकर कहा, अरे यार ये क्या था, क्या तूने अभी चेक किया कि तूने किसी लड़की को नोटिस किया है? आदित्य राणा द ग्रेट फर्स्ट टाइम किसी लड़की को नोटिस किया और उसके बारे में बातें की हैं। यू नो व्हाट, मैं देर नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ आंटी को फटाफट ये बात बताने के लिए। अरे मैं तो मरे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सारी बातें सुनाने के लिए कि कब तू अपने बिजनेस और काम के अलावा किसी और के बारे में बातें करेगा। ये सुनकर जल्दी से कबीर अंदर की तरफ भाग गया था, लेकिन तुरंत ही आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था और गुस्से में बोला था, शट अप, अगर तूने अपनी जुबान से फालतू बातें बोलने की कोशिश की तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू जानता है ना उसी वजह से उस लड़की ने हाथ उठाया था, उसके फ्रस्ट्रेशन कितने ज्यादा है, वो सारा गुस्सा तुझ पर निकाल दूंगा, अब तू देख तू क्या चाहता है। ये सुनते ही कबीर की हालत खराब हो गई थी, वो जल्दी से घबरा गया और बोला, नहीं नहीं यार प्लीज प्लीज माफ कर दे, तू जानता है ना कि मेरा तो इन लड़कियों वड़कियों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, वैसे भी मैं तो बेचारा बाहर बैठा रहने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो कभी किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर उसने जल्दी से बात को घुमाते हुए कहा, तो ठीक है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि तू भी किसी के साथ सेट ना हो, तू भी बाल ब्रह्मचारी रहे और हम दोनों भाई साथ में बाल ब्रह्मचारी का निर्वाह करेंगे, कभी कोई शादी वाड़ी नहीं करेंगे और दोनों भैया इसी तरह जिंदगी काटेंगे, तू टेंशन मत ले। ये कहते ही आदित्य बिना कुछ और सुने सीधा वहां से खिसक गया था और अपने कमरे में चला गया। आदित्य के जाने के बाद कबीर ने तुरंत अपना चेहरा डार्क कर लिया था और मन ही मन बोला था, आई थिंक कि लड़कियां किसी की भी जिंदगी में आने के लायक नहीं होती, आई जस्ट हेट गर्ल्स। ये सोचकर उसने अपनी बची हुई ड्रिंक जल्दी से खत्म की और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया था। वहीं दूसरी ओर इसी रात के बाद एक हसीन सुबह हो चुकी थी। झलक फटाफट उठी और तैयार हो गई। तैयार होकर वो सीधा नीचे आ गई। हालांकि उसने जो कल दादाजी और अनामिका को प्रॉमिस किया था वो उसे अच्छी तरह याद था। नीचे आकर उसने गहरी नजरों से दादाजी को देखा। दादाजी भी झलक को देखते हुए बोले थे, अच्छा बेटा तुम आ गई, तुम तो जानती हो ना कि आज तुम्हारे लिए कितना बड़ा दिन है। तभी वो आगे बोले, अरे बेटा एक काम करो, तुम भी तैयार हो जाओ, आई थिंक तुम्हें भी आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज चलना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने अनामिका को भी तैयार होने के लिए कह दिया था। फिर उन्होंने सौरभ जी को भी आवाज़ लगाई और कहा कि वो दोनों भी तैयार हो जाएं। अब स्नेहा जल्दी से बोल उठी, नहीं नहीं भाई साहब, आज तो हम लोग आप लोगों के साथ नहीं जा पाएंगे, दरअसल मैंने पता किया है यहीं पास में कान्हा जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो मैं रोहन के पिताजी के साथ और रोहन के साथ वहां जाना चाहती हूं।
फिर उन्होंने भावुक होकर कहा, आप तो जानते हैं कि हमारी झलक किन हालातों से गुजरी है और मैंने वैसे भी आज व्रत रखा है, तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं होगा। मैं अपनी बेटी की कामयाबी के लिए व्रत रखना चाहती हूँ और उसके लिए एक छोटी सी पूजा भी रखवाई है। वहाँ कुछ लोगों का जाना ज़रूरी है, इसलिए मैं, सौरभ और रोहन वहाँ चले जाएंगे। आप सब लोग वहाँ चले जाइए। ये सुनकर दादाजी काफ़ी हद तक खुश हो गए थे। उन्होंने स्नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा था, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई है जो हमारे बच्चों पर इस कदर फख्र करता है। थैंक यू सो मच बेटा। ये सुनकर स्नेहा जी की आंखें भी नम हो गईं।